نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب بک میں سے ہم اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے. پیج نمبر 93 پہ ہے. 9th پوائنٹ ہے اس چیپٹر کا کہ جس میں ہم استاد کے ساتھ کیسے معاملہ کریں, اور آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے, استاد سے سوال کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھنا. ملحوظ کا لفظ مفعول ہے, لام ہا زوئے لہذا, اردو میں ہم بولتے ہیں لحاظ کرنا, تو لحاظ وہی ہے جو ملحوظ, یعنی کسی چیز کو اپنے سامنے رکھنا. اور وہ کیا ہے, استاد سے خطاب کے وقت حتی المقدور, مقدور قدر سے ہے قدرت, حتی کہتے ہیں ایک لمیٹیشن, یعنی جب تک, جہاں تک آپ کی لمیٹیشن ہے وہاں تک, یعنی وٹ ایور یو کین ڈو, جتنا آپ کر سکیں اتنا آپ نے اس بات پہ عمل کرنا ہے. کیا, کہ کیوں, نہیں, میں نہیں مانتا, نہیں اس کو کس نے نقل کیا, یہ بات کہاں ہے, اور اس جیسے کلمات ہرگز نہ کہے. ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ پر لگ رہا ہے, گولڈ کی کوائنز لگ رہی ہیں یہ چیزیں, کہ اگر یہ ہماری گفتگو میں آ جائیں تو ہم کتنے شائستہ, کتنے مہذب بن جائیں. ہم جب اپنے استادوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ایسی, یعنی ہمارے اندر فیلنگ آنے لگتی ہیں کہ شاید بس اب یہ تو ہمارے دوست ہیں, اور اس دوستی میں بعض دفعہ اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن کلاس کے دوران آپ دیکھیے کہ جب انسان علم کی محفل میں بیٹھتا ہے نا, اس وقت اس کو صرف ایک ہی چیز فائدہ دے گی کہ جب وہ اپنے آپ کو طالب علم اور استاد کو استاد سمجھے گا. تو یہ جو لفظ ہے نا یہ اریٹیشن پیدا کرنے والے ہیں. چلیے اس پہ ایک ایکٹیویٹی بنائیے, ان کو خوبصورت کیلیگرافی میں لکھیے. اگر آپ میں سے کوئی صدقہ جاریہ کمانا چاہتا ہے تو آپ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں یہ 5-6 لفظ لکھ کے دے دیں. اس پہ کوئی بہت ہی ایسی ایکٹیویٹی بنانا چاہتی ہوں کہ جس کو پھر ہم سب کلاس کو دیں اور اس کو لکھ کے لگا لیں اپنی ٹیبل پہ, یا جہاں بھی آپ کوئی بھی علم کی بات سنتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سوال لفظ کے, ایک ایک کو اگر ہم دیکھیں, کیوں, یہ کیوں کیا ہے, ریزننگ, وائے, اس میں ایروگنس لگتی ہے. پھر یہ جو لفظ ہے نہیں, نہیں, اب دیکھیں نہیں کہنے میں آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی کبھی ضرورت پڑتی ہے, تو جب نہیں کہنا ہو نا تو پھر اس کو سینٹینس کو ڈائلیوٹ کیجئے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے آپ لوگ گروپنگ کرتے ہوں گے گروپ لیڈرز, یا کہیں بھی آپ کسی دوسرے انسان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں, تو اس وقت ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ بالفرض سبق سناتے ہوئے اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے اور اس کو یہ کہا جائے نا آپ نے غلط پڑھا. دیکھیے گا آپ جملہ غور سے سنیں گے, آپ نے غلط پڑھا, اور اگر آپ اس کی جگہ یہ کہیں, اگر سیم یہی بات آپ نے کہنی ہو کہ میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا, لفظ غلط نکال دیں اپنے جملے سے. کچھ چیزیں انسان کی نفسیات پہ بومز کی طرح گرتی ہیں, جو ہی وہ بوم گرتا ہے نا تو انسان پھر اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے, ریئیکشنری ہو جاتا ہے, وہ سننا ہی نہیں چاہتا اس سے آگے کی بات, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بندہ باقی بات اچھی بھی ہو تو نہیں سنتا. یہ صرف استاد کے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے والی چیز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑے کرٹک لوگ ہیں, یہ بڑے ججمنٹل ہیں, یہ بڑے روڈ, بڑے ڈرائی ہیں, بس آئی ڈونٹ لائک دس کائنڈ آف پیپل لائک دس. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی اصلاح بھی کریں پھر بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں. غور سے دیکھیے گا نا تو فرق ٹون کا ہوتا ہے, کس ٹون میں بات کی, کیا لفظ استعمال کیے. اگر ان سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو تو انتہائی نرم لہجے میں ادب کے ساتھ ہم کلام ہو. کسی بزرگ کا قول ہے, جو اپنے استاد سے کہے کیوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. استاد اگر کوئی بات ارشاد فرمائے تو یوں نہ کہے میں بھی یہی کہتا ہوں. یہ عموماً کیسے ہوتا ہے, جب ہم کسی بندے کے منہ سے کوئی بات سنتے ہیں اور بالفرض وہ بات ہم نے بھی کی ہوتی ہے تو لوگ بات پوری سنے بغیر بیچ میں ہی قطع کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا تھا، میں بالکل یہی کہتی ہوں۔ دیکھیں اب یہ باتیں پڑھتے ہوئے ہمیشہ لگے گا نہیں میرے اندر نہیں، لیکن صرف آپ ایک اپنی ٹیلی فون کال کو ریکارڈ کر کے دوبارہ سن لیں، شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں عام طور پہ بات چیت کرتے کرتے آپ اپنی بات چیت کو کسی سے کہیں کہ آپ کو بتائے بغیر وہ ریکارڈ کر لے، بعد میں جب آپ سنیں گے تو آپ تو اتنے شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ بعض دفعہ عام بات چیت کے اندر بھی اتنے جھول ہیں، یعنی عموماً میں نے ایک چیز بہت غور سے دیکھی ہے کہ اگر واقعی ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی کہی ہوئی باتوں کو خود سنیں، اپنی لکھی ہوئی باتوں کو خود پڑھیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم جو باتیں لکھتے ہیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دو چار سال بعد کے بعد ذرا آپ اپنے لکھے ہوئے وہ صفحے پڑھیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعد میں پڑھ کے شرم آتی ہے، ہائے میں ایسے سوچتی تھی، میں ایسے لکھتی تھی۔ آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی پڑھ نہ لے، پھاڑ ہی دوں تو اچھا ہے، ہاں؟ تو لہٰذا اپنی اصلاح جو کرنا چاہتے ہیں کھلے دل سے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اپنے آپ کو چیک بھی کریں گے ہر لمحے ہر موقع پہ۔ یا میرے دل میں یہ بات آئی ہے، یا میں نے بھی یہ بات سنی ہے، یا فلاں شخص نے بھی یہی کہا ہے۔ ہاں اگر استاد یعنی شیخ اس کو پسند کرتا ہو تو الگ بات ہے، یوں نہ کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے خلاف کا کال کیا ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بس یہ باتیں وہی ہیں کہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی باتیں ہیں۔ اگر استاد سہون، سہو کہتے ہیں غلطی، اگر استاد سہون، سہون ارادے سے، اسی سے سجدہ سہو بھی ہے، اگر استاد سہون کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دے یا کسی غیر مدلل بات پر اصرار کرے، مدلل کیا ہے؟ دلیل سے، دال لام لام، یعنی وہ بات جس کی کوئی دلیل نہیں لیکن استاد اس پر اصرار کرے، تو اپنے چہرے پر تغیر نہ لائے۔ تغیر کا لفظ غین یارا سے، غیرا، یہ غیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ جب تغیر لاتا ہے نا پھر وہ بندہ غیر ہی بن جاتا ہے، تبدیلی کرنا، یعنی چہرے پہ اس کی برائی کو محسوس کرنا، اور نہ آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کرے، باڈی لینگویج، اور نہ ہی ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کرے، بلکہ خوشی سے اس کو قبول کرنے کا تاثر دے، اور دل میں یہ خیال کرے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، معصوم صرف انبیاء کرام ہے۔ استاد کے ساتھ خطاب میں عامیانہ گفتگو نہ کرے۔ عامیانہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم اپنے زبان میں انگلش میں کہتے ہیں فرینک وے میں، عام لوگوں سے جیسے بات کی جاتی ہے، اور ایسے کلام سے گفتگو نہ ہو جو عام لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ مثلا یوں کہہ دیا کہ تجھے کیا ہوا، سمجھتے کیوں نہیں، سمجھ گئے نا، آپ سمجھے ہی نہیں، اے انسان، یار، اور اس جیسے دوسرے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، حتیٰ کہ دو آدمیوں کی آپس میں ایسی مخاطبت بھی نقل نہ کرے۔ مخاطبت ڈسکشن، جب خطاب کرنا ایک دوسرے کو، کنورسیشن، دو لوگوں کی آپس کی ایسی ڈسکشن یا مخاطبت، ڈسکشن ہی بیسیکلی یہ ڈائیلاگ ہے، کنورسیشن اور ڈائیلاگ کے معنوں میں، اس کو بھی نقل نہ کرے جس میں بے ادبی کا عنصر ہو۔ عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ کو۔ مثلا یوں کہنا، فلاں نے فلاں سے کہا تو بڑا بے فائدہ شخص ہے، تیرے اندر کوئی خیر نہیں، بلکہ ان جیسے خطابات کو کسی احسن پیرائے میں بیان کرے، اور یوں کہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا کہ اس میں خیر اور بھلائی نہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ بلکہ ان خطابات کو کسی آسن پیرائے میں بیان کرے، اچھے لفظوں میں بیان کرے۔ بعض دفعہ کوئی بات سنانی پڑتی ہے یا بتانی پڑتی ہے ضرورتاً، تو پھر لفظ اچھے استعمال کرے، بالکل ایک جیسے بعض لوگ بات سناتے ہیں نا، پورے اینگل بتاتے ہیں، ایکشن بدل بدل کے، جس کو نقلے اتارنا کہتے ہیں، وائس کی ٹون اس میں بات کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح استاد کو تردیدی کلمات نہ کہے۔ تردیدی کیا ہے؟ جس میں رد ہو، یعنی کسی چیز کو رد کرنے کا انداز ہو، جو اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا استاد کہہ دے تو نے ایسا ایسا کہا ہے، اور جواب میں کہہ دے میں نے ایسا نہیں کہا ہے، یا استاد کہہ دے تیری مراد یہ ہے، تو جواب دے جواب میں کہے कि मेरी मुराद ये नहीं है, ये मैं है लफ्ज़, इसको ठीक कर ले, जवाब में कहे मेरी मुराद ये नहीं है, बल्कि किसी आसन और लतीफ़ पैराए में अपना दिफा करे। इस तरह अगर इस्तफ़हाम तकरीरी के तौर पर यूं पूछे, ये ऊपर की बात वाज़े है ना, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह की बात कर देते हैं कि जिससे फिर उस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। मसा आप देखिए कि उस्ताद कहे कि तूने ऐसा ऐसा कहा है और जवाब में कैसा नहीं कहा, यानी बज़ दफ़ा कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या आपने ये बात कही थी, ऐसे कही थी, तो उसके जवाब में ये कहें नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, ये नहीं कहना चाहिए, खामोशी बेहतर होती है। फिर बज़ दफ़ा जब वो बात ख़त्म हो जाए फिर बाद में अपनी बात को क्लैरिफाई किया जा सकता है, या ये कहना कि मेरी ये मुराद नहीं, यानी फिर ये इससे मुराद है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा सकता है, जी मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा लिखा या मैंने ऐसे बोला, लेकिन मेरी मुराद ये नहीं थी। चंद मिनट का पॉज दे के थोड़ी देर के बाद इस बात को किया जा सकता है, बल्कि किसी आसन और लतीफ़ पैराए में अपना दिफा करे। दिफा करे का मतलब क्या है, डिफेंड करे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करे। इसी तरह अगर इस्तफहाम तकरीरी के तौर पर यूं पूछे, इस्तफहाम कहते हैं सवाल पूछना, फ़हम से फ़ा हा मीम, तो इस्त अलिफ सीन ता लग गया तो फ़हम तलब करना। इस्तफहामी तकरीरी के तौर पर यूं पूछे कि क्या तूने ऐसा नहीं कहा, क्या तूने ऐसा नहीं कहा, यानी उस्ताद किसी मौके पे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने ऐसा नहीं कहा, तो जवाब में नफ़ी में तरदीद ना करे, यूँ ना कहे नहीं मैंने नहीं कहा है, बल्कि खामोशी इख्तियार करे, या किसी लतीफ़ पैराए में तौरिया से काम लें। तौरिया क्या होता है कि दिल में कुछ और रख के ज़ुबान से कुछ और बोलना, यानी दिल में बात है थी लेकिन बात इनडायरेक्ट बात करना, जी इनडायरेक्टली बात कर दे, ठीक है, जिससे उस्ताद समझ सके। अगर साफ कहे बग़ैर कोई सूरत नहीं बनती तो यूं कहे अब मैं यूं कहता हूं, अब मेरी राय यूं है, ठीक है। तो आप तो मुश्किल में पड़ गए होंगे ये टॉपिक सुन के, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में, किसी के जहन में कोई शुबा है, लेकिन सारे पॉइंट को अगर मैं रैप अप कर दूं तो खुलासा कलाम ये है कि इंसान सोच के बोले, जो बात करे उसको पता हो कि मैं क्या बोलने लगा हूँ, मैं क्या कहने लगा हूँ, और इस तरीके से फिर वो उस बात से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगा। ये तो बात थी सवाल की कि उस्ताद के साथ सवाल के मामले में कैसा हो। अगला टॉपिक भी साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि रेलेवेंट ही है, कि उस्ताद के सवाल का जवाब देने का अदब वो क्या है। शेख को किसी ऐसे मसले का हुक्म या अजीब नुक्ता बयान करते हुए सुने जो पहले से उसको आता हो, या कोई हिकायत या शेर जो पहले से इसको याद हो, कहते हुए सुने तो बेरुखी से ना सुने, बल्कि शौक़ और ज़ौक का इजहार करते हुए और ख़ुद को ज़रूरतमंद ज़ाहिर करते हुए इसको सुने, अपनी खुशी का इजहार करें, जिससे ये तासिर हो कि इसको कोई नई चीज़ मिल गई है। वास्तव आम लोगों की आदत क्या होती है कि कोई बात सुनी होती है फिर कोई बेचारा सुनाने लगता है ना, तो बीच में बोलते हैं जी 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 ये सुनी हुई है, ये बहुत पता, जी जी मुझे भी पता है, हाथ हिलाना शुरू होते हैं। अमूमन आम में गैदरिंग्स में भी ये बात होती है, तो आप देखिए कि बाज़ दफ़ा अगर उस्ताद ने ख़ुद ही वो बात कही हो लेकिन वो दोबारा भी वो बात सुनाता है तो उसकी कई हिकमतें भी होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो बात दूसरी जगह भी कोट हो सकती है, तो आपका जहन खुलता है कि वाह इस एंगल में भी ये बात हो सकती थी, हिंट के लिए लिख लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा महफिल में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसने बिल्कुल नहीं सुनी होती, तो उसके सुनाने से उसको भी फ़ायदा होता है। हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता कि जो बात सुनी हुई वो दूसरों ने भी सुनी है। अब बात बड़ी अहम है, बहुत ही नसीहत आमोज़ है, तो फिर अगर इंसान सोचे अच्छा 50 लोग बैठे हैं तो इनमें से 40 ने सुनी होगी लेकिन माइट भी जो 10 आए उन्होंने नहीं सुनी होगी, तो क्या हर्ज है मैं दोबारा सुना दूँ। तो जिन 40 लोगों ने वो बात सुनी होती है वो खुशी से सुन ले, सर ना हिलाएं कि जी ये तो आगे बता चुके हैं आप और अब आगे चलें, ये इससे मुराद है। हज़रत अता रहमहुल्ला फरमाते हैं बस औकात किसी शख्स से कोई हदीस सुनता हूँ, यानी बस औकात मतलब कई दफ़ा किसी शख्स से कोई हदीस सुनता हूँ हालांकि मैं इससे ज़्यादा वाकिफ़ होता हूँ, मगर सुनाने वाले को मैं ये तासुर देता हूँ कि गोया इसके मुतल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं। ऐसा कौन करेगा जिसके अंदर आजिज़ी होगी, ये बहुत बड़ी एक निशानी होती है इंसान के अंदर आजजी होने की या तकब्बुर होने की कि दूसरे की बात को वो सुनता कैसे है, किस नज़र से वो इस बात को सुनता है। और ये भी फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा कोई नौजवान मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाता है जिसके मुतालिक मैं इसकी पैदाइश से भी पहले वाकिफ होता हूँ, यानी कि वो इतनी पुरानी बात है कि मैंने तो कई साल पहले की सुनी हुई है मगर इसको इससे सुनता हूँ। अगर उस्ताद हदीस सुनाने से पहले ये पूछे कि फलां हदीस याद है, अगर याद हो तो नाम हाँ से जवाब ना दे क्योंकि इसमें उस्ताद से इस्तग़ना मुतरशिह होता है। सुभान अल्लाह, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। और नहीं याद है भी ना कहे क्योंकि ये झूठ है। चलिए, इसको मुश्किल लफ्ज़ है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। यानी अगर कोई हदीस उस्ताद सुनाने लगे, अब हदीस से मुराद कोई भी बात है, क्योंकि पिछले दौर में आपको पता है कि जिन अदवार में ये किताबें लिखी गई थी ना, उस वक्त लोगों का ज़्यादा शौक हदीस को सीखने का था। कुरान पाक तो अमूमन लोग समझ जाते थे, सीख लेते थे, लेकिन अहदीस को सीखने का एक बहुत रुझान था और अमूमन उस्तादों से जाके हदीस की किताबें सीखी जाती थी। अब अगर उसमें या कुरान के पढ़ाने में या किसी और सब्जेक्ट में उस्ताद पूछे कि अच्छा फलां हदीस याद है, यानी वो सुनाने लगे वो कि अच्छा वो याद है जो एक ऐसी बात थी, अब याद है तो आप कह देंगे हाँ हाँ याद है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उस्ताद सुनाना चाह रहे हैं, अब आपको वो पहले से आती थी, तो इससे नुकसान क्या होगा कि उस्ताद से इस्तग़ना, गनी के लफ्ज़ से है ये, गैन नून जा या गैन नून हमज़ा, यानी इससे फिर इंसान को फील होगा कि मुझे उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। मुतरशिख का मतलब के वाज़े या ज़ाहिर होगा या फीलिंग आएंगी इस बात की कि देखो इसको तो पहले ही आती है, अब उस्ताद की तो ज़रूरत ही नहीं रही हा? और अगर आप कहेंगे नहीं याद तो झूठ हो जाएगा। तो ऐसा जुमला बोले ये खामोश रहें, बहुत सारी चीज़ों में खामोशी बेहतर होती है। लेकिन देखिए ये बातें इल्म के अदब की हैं, यहाँ एक बहुत वाज़े नुक्ता है, इल्म का अदब, इल्म सीखने का ही अदब है। इन बातों को आप किसी और जगह पे नहीं ले जा सकते जहाँ मिसाल है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कोई बात कहने की। लेट्स सी, आपको कोई किसी ज़िम्मेदारी पे किसी ने खड़ा कर दिया, रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया, और उस्ताद कहता है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि जितने लोग आएंगे उनके नाम मुझे एंड पे देना। अब ज़ाहरी बात है कि उसका फ़र्ज़ है कि वो सबकी बातें लिखे और दिस एंड दैट करे, और बाद में उस्ताद पूछे तो बता दे। अब अगर इस वक्त आपको छुपाएंगे ना, जब आपको किसी ड्यूटी पे फ़र्ज़ किया जाए, आपको कोई जॉब दी जाए, कोई आपको ज़िम्मेदारी दी जाए, उस वक्त हकायक को नहीं छुपाना चाहिए। मिसाल दूँगी कि जैसे कस्टमर सर्विस है, किसी भी कंपनी में देखें, बड़े बड़े यानी नाम हैं जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कस्टमर सर्विसेज होती हैं, टेलीफोन कार्ड ख़रीदते हैं फिर उसकी कस्टमर सर्विस है, कोई अपने चीज़ बाय की फिर उसमें थी। अब जो कस्टमर सर्विस पे बंदा बैठा हुआ है उसकी जॉब क्या है? उसकी जॉब ही है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के फीडबैक कंपनी के मालिक तक पहुँचाए ताकि वो उस चीज़ को दूर कर दे। लोग पैसे खर्च करते हैं, हज़ारों डॉलर लगाते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए या फीडबैक के लिए। अमूमन मैंने देखा है कि लोग फीडबैक्स भेजते हैं कि आप हमें इसका फीडबैक दें और देन यू विल गेट दिस, आपको एक बोनस मिलेगा, या बाज़ में आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। एक दफ़ा हमने कंपनी चेंज कराई तो उसके बाद एक फ़ोन कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ रहें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपने हमारी कंपनी टेलीफोन की छोड़ के दूसरी क्यों ली, हम आपको इस असेसमेंट या वट एवर जो भी उसका नाम था उस पर हम आपको एक वाउचर भेजेंगे और ऐसे गिफ्ट भेजेंगे। वजह क्या है? सिर्फ हमें ये बता दें कि आपने हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी क्यों ली। फिर उसमें छोटे छोटे सवाल थे, क्या सर्विस अच्छी थी, क्या दिस एंड दैट। आप सोचिए, एक उस बंदे को उन्होंने हायर किया जिसने 10 मिनट आपसे बात की, उसको पे किया, पूरा सिस्टम डेवलप किया, फिर वो लिखेगा, फिर वो आगे किसी को भेजेगा, प्लस वो आपको $5 से $10 का कोई वाउचर भी भेज रहे हैं। तो ये लोग पागल तो नहीं है जो ऐसे खर्च करते हैं? उनको पता है ये फीडबैक फिर हमें आगे जाके फ़ायदा देगा। तो हमेशा अगर ऐसा कोई काम आपके ज़िम्मे हो किसी मौके पे, तो फिर उसको बहुत रियलिस्टिकली, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में, बग़ैर एग्जेजुरेशन के कम या ज़्यादा किए बताया जा सकता है, ताकि उससे फिर मामला जो है वो बेहतर किया जा सके। फिर एक और चीज़ ये कहते हैं कि नहीं कहेंगे तो झूठ है, बल्कि यूँ कहे। अब उसका वो एक इन बिटवीन वे बता रहे हैं। तीसरा हल क्या है कि उस्ताद से सुनने का कोई और मज़ा है, आपसे भी सुनना चाहता हूँ वगैरह अल्फाज के, यानी इस तरीके से उस बात को, जी आप सुना दें, दोबारा सुन लेंगे, इसी से मिलता जुलता आप लेबी लफ्ज़ कह सकते हैं कि हाँ जी इंशाल्लाह सुनाइए, रिवाइज हो जाएगा या हदीस पढ़ने का अजर मिल जाएगा, तो इस तरह का कोई लफ्ज़ बोल दें। अगर उस्ताद पहले से याद करने को पसंद करता हो या हिफ्स करने का हुक्म दिया और याद के बारे में पूछे तो हाँ कहना ही अफजल है, क्योंकि इसमें उस्ताद की रजामंदी है और इसका हुक्म है और इसी में बरकत है। क्या समझ आई? उस्ताद पहले से याद करने को पसंद करता हो या हिफ्स करने का हुक्म दिया और याद के बारे में पूछे तो हाँ कहना अफजल है, ये क्या बात है? इन तीनों चीज़ों को आप जोड़ के देखें, किस चीज़ को याद करने की बात है। मसलन अगर कोई चीज़ उस्ताद ने बता दी और वो कहे कि अच्छा आप इसको याद भी कर लें, ठीक है, अब जब आप याद करेंगे, उस्ताद पूछे क्या ख्याल है इसको याद कर लें, या उस्ताद का दिल चाह रहा है कि आपको यह हदीस ज़बानी याद हो जाए, या बाज़ वो हुक्म भी दे देता है, या कहे क्या ख्याल है इसको याद कर लें, तो आप कहें नहीं नहीं छोड़े छोड़े बस ऐसे लिखी हुई पढ़ लेंगे, नहीं फिर हाँ कहें, क्योंकि इस उस्ताद को खुशी होगी और इसी में बरकत है। फिर अगला आप नुक्ता लिखते हैं कि बार बार इयादे का मुतालबा ना करें, यानी दोहराने को, वो पॉइंट छूट गया था ज़रा बताइएगा। अच्छा वो बता दें, कोई चीज़ जो इंसान अपने साथियों से शेयर करके ले सकता है उस पर फिर उस्ताद को तकलीफ़ में ना डालें, क्योंकि इससे उसकी एनर्जी भी जाएगी, उसका वक्त भी जाएगा। हज़रत इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इयादतुल हदीस अशद मिन नक़्ल सख़र, हदीस को दोहराना चट्टान उठाने से भी भारी है। क्यों? इसलिए कि अब देखिए कि जब बंदा एक बात कह देता है ना, तो उस वक्त बाज़ बातें उस्ताद करते हुए दिल से कर रहा होता है, उसके सामने कोई नोट्स नहीं होते, बाज़ अपने हाफ़िज़े से कर रहा होता है, तो फिर उस वक्त अगर दोहराने को कहा जाए तो मनोमन वो बात नहीं कही जा सकती। उसके लिए बेहतर यह है कि किसी दूसरे को जिसने उसको जब्त कर लिया या लिख लिया उससे पूछ लिया जाए। सुनने और समझने में सुस्ती हरगिज़ ना होने पाए, ख्याल को किसी और जगह मुतवज्जे करके फिर उस्ताद से हदीस दोहराने का मुतालबा हरगिज़ ना हो, यानी ख़ुद तो फोकस नहीं थे, कंसंट्रेशन नहीं थी, कहीं और पहुंचे हुए थे सोचों में, फिर जब ख्याल आया वापस उस रूम में आए, फिज़िकली तो थे ही वहाँ, ज़हनी तौर पे वापस आए, वो जी वो मेरा छूट गया था ज़रा दोबारा बता दें, ऐसा ना करें क्योंकि ये बेअदबी है, बल्कि शुरू से हमा तन गोश होकर सुने। हमा पूरा, तन जिस्म गोश सुनना, पूरे जिस्म को हाजिर करके सुने और समझने की भरपूर कोशिश करें, ठीक है, यानी अपनी कोताही की सज़ा उस्ताद को ना दे कि अब मैं नहीं था इधर तो ज़रा आप मेरी हेल्प कर दें। बास मशाइख शेख की जमा, ऐसे लोगों के कहने पर ना सिर्फ सबक नहीं दोहराते बल्कि ऐसों को सज़ा भी देते हैं। हाँ, शेख से फासला होने की वजह से ना सुन सके या भरपूर सुनने और समझने की कोशिश के बावजूद ना समझ सके तो दोहराने की दरख्वास्त करने में कोई मज़ायका नहीं, साथ अपना उज़र भी अदब के साथ बयान करें। तो ये था एक छोटा सा खुलासा उस्ताद के साथ सवाल और जवाब का। आप लोग सवाल कोई करना चाहें या इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अश्हदु अल ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।